आगे चलते हैं। नेक्स्ट टिप जो हमारे सामने है, खाली ना बैठे। वो कहते हैं ना कि एम्प्टी माइंड इज डेवल्स वर्कशॉप। जो लोग खाली बैठे होते हैं ना, अब इस पे सुनिए, बस इस पे स्टिल होकर सोचिए, सुनिए, इधर उधर देखने की बजाय कि मैंने खाली ना बैठने से क्या मुराद लेना। फारिग नहीं रहना, अपने आप को मसरूफ रखें। दुनिया में खाली बैठने वाले वो होते हैं जो अफवाहें फैलाते हैं, क्योंकि इनके जहन और दिमाग बटे हुए होते हैं। आप पढ़ते हैं सूरत तौबा में, खासतौर पे तबुक के सफर से पीछे रहने वालों के लिए आयत 87। सूरत तौबा में क्या आता है? वो राजी हो गए हैं पीछे रह जाने वालों में हूँ, शुक्र हम पीछे बैठे हुए, ना ही हमें कोई काम मिले तो अच्छा। हाँ, इंसान का बेकार बैठना नहायत खतरनाक है। इसका जहन शैतान का घर बन जाता है, मस्कन, और वो शुतर बेमुहार की मानिंद इधर उधर भटकेगा। यानी ऐसा ऊंट जिसकी रस्सी टूटी हुई है और समझ नहीं आ रही किधर जाऊं तो किधर। जब आप काम से खाली बैठें तो गम और फिक्र और उलझने आकर रहेंगी। सोचिए, ऐसे ही होता है ना, जब आप रिक्लाइनर पे बैठे हैं, चाय का कप हाथ में है, सारा गम परेशानियों का एक पटारा नहीं आपके सामने खुलता। फिर माजी, हाल और मुस्तकबिल की सारी फाइलें खुल जाएंगी और आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो उसका हल ये है कि खाली ना बैठे। इस जुमले को अपनी आंखों में जज्ब करते हैं, इतनी देर इस जुमले को देखें और पढ़ें और इसमें से अमल नोट करें, मैंने खाली नहीं बैठना। और ये नसीहत है हमारी एक दूसरे को कि बेकारी की बजाय कुछ अच्छे काम शुरू कर दें। बेकार रहना अपने आप को जिंदा दरगोर करना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, सुकून का कैप्सूल लेकर खुदकुशी करना है। यानी कोई ऐसा कैप्सूल खाता रहे जिसमें शुगर ही हो, चीनी हो, और कहे कि फिर मेरी शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो खुदकुशी है ना। बेकारी की मिसाल तो इस स्लो टॉर्चर की है जो चीन के कैद खानों में होता था, कि कैदी को उस नाली के नीचे कर देते जिससे हर मिनट पर एक कतरा गिरता, और इन कतरों के इंतजार में कैदी पागल हो जाता था। ऐसे ही होता है, टॉर्चर देने वाले ऐसे ही देते हैं, चिखाते हैं, फिर पीछे करते हैं, फिर करते हैं। तो आराम तलबी गफलत का नाम है। फुर्सत एक पेशावर चोर है। इस हालत में आपकी अकल मोहूम जंगों की शिकार हो जाएगी। लिहाजा जब खाली हो तो नमाज पढ़ने खड़े हो जाएं, तिलावत करें, मुतालिया करें, लिखें या तैराकी करें, कुछ करें, या ऑफिस को दुरुस्त करें, घर की सफाई करें, दूसरों का कोई काम कर दें, काम के चाकू से फुर्सत को काट दें। दुनिया के तबीब और डॉक्टर इसके बदले 50% खुशी की गारंटी देते हैं। यानी आप किसी डॉक्टर या हकीम के पास चले जाए ना, तो अगर डिप्रेशन के आप मरीज हैं या बहुत ही सैड हैं, तो वो ये सब काम आपको कहेंगे और साथ कहेंगे कि 50% इलाज आपका हो गया। किसानों, मजदूरों और कामगारों को देखें कि वो किस तरह चिड़ियों की तरह मस्ती से गाते और खुश रहते हैं। यानी जो खूब काम करते हैं ना, मजदूर भी और किसान भी, जो बड़ा मेहनत का और कह लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा थकने वाला काम करते हैं, वो अक्सर खुश होते हैं, इंजॉयमेंट। और इसके बरक्स एक आप हैं कि बिस्तर पर पड़े आंसू पोंछते रहते हैं क्योंकि बेकारी ने आपको डस लिया। तो नोट कीजिए, ख़ास तौर पर डिप्रेशन के मरीजों के बारे में ये टिप है कि खुद को फारिग रखना छोड़ दें, कुछ भी करें लेकिन कुछ करें, क्योंकि जब आप फारिग होकर बैठ जाएंगे तो आपकी सोच नेगेटिव होगी। और याद रखिए कि जो खाली बैठते हैं ना, उसका एक खास नैरी हो जाता है लोगों को देखने का। बस अगर कुछ लोगों को आप काले रंग के ग्लासेस दे दें और उन्हें कहें कि इसके साथ दुनिया को देखें, तो क्या होगा? हर चीज़ काली होगी। वो कहेंगे ये भी काला, वो भी काला। बिल्कुल फारिग बैठे बंदे का दिमाग काला हो जाता है, उसकी आंखों के आगे काली ग्लासेस लगती है, फिर उनकी सोचने की ऐनक भी काली, उनके नज़रिए भी काले, वो उनका लोगों के बारे में दिमाग भी काला होता है। और हर वक्त बैठकर वो दूसरों के नेगेटिव सोचते हैं, नतीजा क्या होता है? पूरे खूब भर जाते हैं, उनको किसी की को खूबी नहीं दिखती। और जिनके दिल दिमाग पहले से भरे हुए हों, फिर वो दूसरों की बड़ी से बड़ी खूबियों का इकरार नहीं करते। कभी कोई उनके सामने तारीफ करे ना किसी की, फुलां कहते हैं हमें पता है वो नाक बहती थी इनकी बचपन में, हाँ हम इनके बारे में सब जानते हैं, आए मैं कभी फारिग हुए तो बताऊंगी ये हैं क्या और आप आज इनको क्या समझने लग गए। यानी वो हमेशा बचपन की कोई बात निकाल लेंगे, पिछली जिंदगी का कोई ताना दे देंगे, हसद आने लगता है। तो कुछ लोग होते ही कह लीजिए नेगेटिव माइंड है, और उसमें अक्सर वो होंगे जिनके पास कोई बड़ा काम नहीं होता। अपनी जिंदगी में 3 C मिलाइए। ऐसी सोच रही थी तो मैंने लिखे, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। कोऑपरेटिव बनिए, कॉम्पिटेंट बने और कॉम्प्रोमाइजिंग बन जाए। ये 3 C's जिसकी जिंदगी में आ जाएंगे, नेकियों के मौके बढ़ते जाएंगे। इतने ऑर्डर आएंगे आपको नेकियों के कि आप सोचेंगे भी नहीं। आप कहते मेरे पास काम ही नहीं। अच्छा, किसी से पूछो किया? दिया ही नहीं आपने, रिपोर्ट बनाई आपने, पूछा ही नहीं। अच्छा, आपने वो कर लिया? करना था। खाली बैठने वाले लोगों का दिमाग माउफ हो जाता है, और कुछ लोगों को दिल करता है, देखे ना, गुस्सा इतना आता है कि उनको कोई बात कहने के बजाय दीवार में सर मार लें। इतने पत्थर के पत्थर कुंद जेन हो जाते हैं। लेकिन आपने इसमें से कुछ नहीं करना, जो आपका दिल कह रहा है आपने उनको बर्दाश्त करना है। कभी कभी कमजोर चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है ना, तो उन लोगों को बर्दाश्त कीजिए जो आपसे IQ में बड़े लो पे हैं, जो आपके स्टैंडर्ड का काम नहीं भी करते ना, उनको कबूल कीजिए, क्योंकि बाद में वही आपको खैर देंगे। हम चाहते हैं हमारे इर्द गिर्द वाले 10 IQ के हों, तो पहली बात है वो आपके पास क्यों रहेंगे, वो खुद ना कुछ कर लें। तो याद रखिएगा, जो खाली बैठता है ना, वो अपने मुस्तकबिल को रिस्क पे लगा लेता है, उसकी ज़िंदगी बहुत ही दूसरी तरफ जाती है। तो फरागत का फिर क्या नाम आपने मैंने रखा? खुद को खुदकुश कर लेना। आप देखिए कि अक्सर लोगों को इस वक्त बहुत होता है, फिर बैठ कर कभी TV पे बेकार चीज़ें देखेंगे, फिर खबरें सुनेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, और जो खाली माइंडेड लोग हैं वो बैठ के तबसरे पढ़ते हैं। तो आज की एक टिप भी तो लिखिए ज़रा, ये भी आपका होमवर्क है। एक दिन, एक पूरा दिन, 1 मिनट के लिए भी खाली ना बैठे, ठीक है? कभी खाने के लिए भी बैठे हैं ना तो खा रहे हो साथ, पढ़ने के लिए बैठे तो पढ़ रहे हैं। ऐसे ही नहीं बैठना सोच के, वो जैसे अल्लामा इकबाल की एक पुरानी तस्वीर है ना, सोचों में डूबे हुए, ये काम छोड़ना है आपको। एक दिन चूज कर लें जिस दिन आपने पूरा दिन काम करना है। जिस दिन आपकी ये जिंदगी होगी ना, आप देखें मसलन घर की सफाई भी हो गई, कारपेट भी उठा के धो दिए, कपड़े भी इस्त्री कर दिए, उस दिन जो मज़े की नींद आएगी ना, उसका बहुत मज़ा है। तो आराम तलबी गफलत का नाम है। बस खुद को अच्छे कामों में रखिए, काम के चाकू से फुर्सत को काट दें। क्या आपने इस जुमले पे गौर किया था? काम का चाकू लीजिए, फुर्सत को काट दीजिए, क्योंकि फुर्सत एक पेशावर चोर है जो किसी वक्त भी आपको खुद से चुरा देगा। अब जरा सा तकाबुल करते हैं, फुर्सत बामुकाबला मेहनत। फुर्सत है आराम तलबी, लेयर लग्जरियस, और इसके ऊपर हमारे घर में कितनी चीज़ें हैं, रिक्लाइनर भी हैं, काउचेस भी हैं, मैट्रेसेस भी हैं, घूमने वाली कुर्सियाँ भी हैं, आरामदेह जूते भी हैं, आरामदेह कपड़े भी हैं। अब आप आराम तलब ज़िंदगी खुद भी गुजार रहे हैं, अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। याद रखिए, ज़िंदगी के आगे क्या खौफनाक मुस्तकबिल है, नंबर एक गम और फिक्र आपको लगे रहेंगे। दर के माइंड को रिलैक्स जो कर दिया, तो वो फिर अपनी मर्जी से चलेगा, फिर उलझने पैदा होती हैं, बेकार बंदा हमेशा उलझा रहेगा, साजिशें होंगी, अफवाह साजियां होंगी, कभी जिस्मानी तौर पे बीमार हो जाएंगे क्योंकि फारिग बैठे रहे, जहनी बीमारियां, और आखिर में ऐसा बंदा माशरे पे बोझ बनता है। इसके बरक्स आप देखिए, अगर आपको मेहनत कशी की आदत पड़ गई ना, तो अकल और हुनर में इजाफा होगा। जो नहीं आता सीख लीजिए, ये कभी ना कही कि मैं ये कर नहीं सकती, और वाकई कुछ चीज़ें जो आप नहीं कर सकते तो उस पर वक्त भी ना लगाइए। फिर इस तरह आप देखिए कि मेहनत करने वाले के साथ बहुत बरकत है, उसके माश में बरकत है। हदीस में अतल कासिबु हबीबुल्ला, फिर मनफी सोच से आज़ादी मिलेगी, जिस्मानी तौर पे मजबूती होती है ऐसे लोगों में, फिर जहनी सुकून, माशरे की तामीर, यानी बी पॉजिटिव, बी हार्ड वर्किंग। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बेकारी से होते हैं, हम कहते हैं बेकार वो होता है जो जॉब लेस होता है, ले ऑफ, मर्दों की ज़ुबान में तो यही कहते हैं ना, तो ख़वातीन में कौन होता है भाई बेकार? जिसके पास कार नहीं है। बेकार वो नहीं है जिसके पास कार नहीं है, बेकार वो है जिसके पास काम नहीं है। देखिए, हमारी अक्सरियत इल्ला माशाल्लाह आधे से ज़्यादा दिन बेकार गुजारती है, माने ना माने आप। काम करके कितना देर लगाते हैं, खाना पकने में कितना टाइम लगता है, धुलने में, स्त्रियों में, और यहाँ सफाई सुथराई कौन सी मुश्किल है। सारे भी काम करें, मैंने एक दफ़ा टाइम मैनेजमेंट के सेशंस में ये एक्टिविटी कराई थी, 24 बॉक्सेस बनवाए थे, 1 आवर ईच, 1 आवर 1 आवर, और साथियों से कहा कि आप इसको फिलअप कीजिए। आपको सारे दिन में जो काम करने हैं उसके लिए कितने घंटे चाहिए, मतलब सोना कितने घंटे आपने लिखे, आपको फ़ोन पे कितना टाइम जाना है, किचन में काम कितनी देर करना है, स्त्री कितनी, बच्चे कितने, खुल के लिखिए। वो लिखते गए एक बॉक्स फिल अप, दूसरा फिल अप, तीसरा, चौथा। एंड पे पता है आपको क्या हुआ था? बड़े खुले दिल से जो लोग कहते जा रहे थे मैं लिखी जा रही थी। इवन किसी को सोशल मीडिया पे 2-3 घंटे चाहिए, किसी को फेसबुक पे चाहिए, किसी को दोस्तों से बातें करनी है, और 8 घंटे सोबी के बीच में, यकीन करें खुले दिल से हमने वक्त ज़ाया किया। और एंड पे 22 आवर्स हुए टोटल, जिसमें हमारी इबादत भी थी, क्लासेस भी थी, ड्राइविंग भी थी, बच्चों का पिक एंड ड्रॉप भी था। तो ये 2 घंटे किधर है आपके? कुछ नहीं पता, ये बेकारी की नज़र होते हैं। तो वक्त को कीमती पूंजी समझिए। आप इस तरह के काम करके अपने आप को खतरों में डालेंगे, आप का जहन शैतान का मस्कन बन जाएगा, आप एक ऐसे ऊँट की तरह हो जाएंगे जिसकी मुहार टूटी हुई है, और फिर बिल आखिर फिक्र और उलझन। ये ऐसी जैसे गाड़ी लेकर इधर उधर फिरते रहें, एंड पे गाड़ी भी गर्म, आपका दिमाग भी गर्म, और सर में दर्द भी बहुत सारा होगा, और फिर माजी हाल मुस्तकबिल की कोई ना कोई फाइल आपके दिमागों में खुली रहेगी। करें क्या? नमाज, तिलावत, मुतालिया, तैराकी, घर की सफाई, दफ्तर की सफाई, आज का दिन संवारें, काबिलियत बढ़ाएं, स्किल्स बढ़ाएं, और सब कुछ करके अल्लाह से कहें कि मैं तुझ पे तवक्कुल करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे हमें आपको क्या एडवाइस दी? आज की इस मौजू की हदीस लीजिए, इब्ने माजा की रिवायत है 4170, इब्ने अब्बास रावी हैं। दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें अक्सर लोग अपना नुकसान करते हैं, सेहत और तंदरुस्ती, और फुर्सत और फरागत के अय्याम। जी, ये दो चीज़ों को कंट्रोल कीजिए, आप देखेंगे बहुत सा गुमशुदा वक्त और बहुत सारा गुमशुदा सुकून और इत्मीनान और खुशी आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको खुश करेगा। अब आप कहते हैं बातें तो आप बहुत कह रहे हैं अच्छी ही लग रही हैं, लेकिन करें कैसे? हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो उसका जवाब लीजिए, हम गफलत की दुनिया से कैसे निकल सकते हैं? हल ढूंढिएगा, लिखिए। पहली बात है कि अपनी ज़िंदगी फजूल और बेकार ना बसर करें। कुछ भी नहीं है ना, जाके बाहर गार्डनिंग करनी शुरू करते हैं, कुछ भी नहीं है ना, जाके वॉक करते रहें और जिक्र करते रहें। ठीक है, उम्रे रायगां गुजरने का गम इतना अहम है कि अगर इंसान इस पर तमाम उम्र भी रोता रहे तो कम है। फिर इसी तरह आप देखिए, जो इबादत कम और लख बातें ज़्यादा करते हैं ना, उनका इल्म थोड़ा रहता है, कल्ब अंधा रहता है, और उम्र रायगां है, क्योंकि इखलास से बेहतर कोई अमल नहीं। जो शख्स अच्छी किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं रखता, वो मेराज इंसानी से घिरा हुआ है। मुतालिया कीजिए, अपने बढ़ाइए, यकीन कीजिए कि एक एक सेशन से पहले जिस जिस चीज़ से फ़ायदा उठाने की मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए, मैं अक्सर सोचती हूँ कि एक रंग का फूल होता है ना, पिंक कलर के फूल बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन अगर एक वॉज में डाइवर्सिटी के साथ 6-7 रंग के फूल हों, तो जाहरी बात है उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, 6-7 बागों में जाकर 6-7 तरह के फूल लेने पड़ेंगे, लेकिन एंड पे खूबसूरती होगी। अल्लाह जानता है, सिर्फ अल्लाह के लिए, आपके लिए नहीं है, लिवज अल्लाह। अपने अंदर के सुकून और खुशी और अपने इस पैशन को बढ़ाने के लिए आपको बताती हूँ, मैंने कभी लिखी हुई बात पे एक चीज़ को पकड़ कर आगे करने में कोशिश नहीं की। मैं सोचती हूँ किताब लोग खुद पढ़ लेंगे, क्या मुश्किल है। और वो किसी की बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि किताब से पढ़ के सवाल ना किया करो, उसका जवाब तो किताब से मिल जाएगा। उस्ताद से वो सवाल करो जो तुम्हारी अमली ज़िंदगी में आते हैं, वो सवाल जिसका जवाब तुम्हें किताब से नहीं मिलता वो उस्ताद से करने चाहिए। और जिनका उस्ताद कोई नहीं, वो खुद किताबें पढ़ पढ़ के उस्ताद बनते हैं, वो फिर उलझते रहते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि आपकी मेरी ज़िंदगी में इत्मीनान और सुकून डाल दें। टिप नंबर 10, नक्काल ना बने, क्योंकि वी आर नॉट मंकीज। नकल मारना, इमिटेट करना, ये बंदरों का काम होता है। तो आर यू मंकी? कुछ लोगों के अपने अंदर कुछ नहीं होता, वो नकलें ही मारते रहते हैं, कभी उसकी कभी उसकी, वो क्या कर रहा है मैं भी कर लूँ, उसने क्या कहा अच्छा मैं भी वही कहने चले जाऊँ, उसके एक एक लफ्ज़ को बोल दूँ, लिख लूँ, सुन लूँ। नहीं, दूसरों की नकल ना कीजिए, अपनी शख्सियत को गुम ना कीजिए। बहुत सारे लोग मुस्तकिल अजाब का शिकार रहते हैं, क्योंकि वो चाहते क्या है कि अपनी हरकत व सकनात, आवाज़ और कलाम, हर चीज़ में दूसरों की ऐसी नकल करें कि इन्हीं जैसे होकर रह जाए, जिसको आप कहते हैं कार्बन कॉपी बनना चाहते हैं, एक एक चीज़ नोट करते हैं, कहते हैं हम भी यही करेंगे। नहीं, उसको सज रही है वो चीज़, आपको नहीं सजेगी। होता क्या है कि फिर इनकी अपनी शिनाख्त खत्म हो जाएगी। मसलन आप देखिए तकल्लुफ, تکبر، جلن وغیرہ ان کے روگ ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شکل و صورت میں دو آدمی برابر نہیں ہوتے، تب وہ اپنے اخلاق اور صلاحیتوں میں کیسے یکساں ہو سکتے ہیں؟ نوٹ کیا آپ نے یہ جملہ؟ چلے بات میں آپ کو ریکیپ سیشنز میں دیتی ہوں، ابھی ابھی سنتے جائیے، پڑھتے جائیے، اور ایک ایک لفظ کو لکھ سکتے ہیں تو لکھ سکیں، نہ بھی تو کچھ ٹپس تو لکھتے جائیں۔ یعنی دو لوگوں کی شکل نہیں برابر ہوتی آج تک، فنگر پرنٹس نہیں برابر، تو اخلاق اور صلاحیتیں کیسے برابر ہوں گی؟ ٹوین بچیاں بھی دیکھیے برابر نہیں ہوتی، آپ اپنی جگہ بالکل الگ چیزیں ہیں، تاریخ میں آپ کا کوئی مثل نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں بے مثال، نہ دنیا میں کوئی آپ کا ہم شکل ہے۔ آپ اپنا نام لکھیے، مثلا آپ فاطمہ ہیں، آپ عائشہ ہیں، آپ عمر ہیں، آپ علی ہیں، آپ عبداللہ ہیں، آپ ابراہیم ہیں، آپ وہی ہیں جو آپ ہیں۔ تو بس دوسروں کی تقلید اور نقل کی کوشش کیوں کریں؟ اپنی حیثیت اور کردار کے مطابق چلیے۔ یعنی آپ کو جو سجتا ہے نا، حیثیت ہوتا ہے ڈیل ڈول، آپ کا قد کاٹ سب کچھ، اس کے مطابق چلیے۔ ہر آدمی اپنے مشرب کو جانتا ہے، یعنی جہاں سے اس نے پانی پینا ہے۔ ہر ایک اپنا قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، سورت بقرہ کی آیت ہے۔ تب جیسے آپ ہیں ویسے ہی رہیں، آپ کو اپنی آواز، لہجہ اور چال ڈھال میں تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ ہمارے یہاں اس پہ ایک بڑا جملہ بولتے ہیں، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں بول دوں، قبا چلا ہنس کی چال کہ اپنی بھی بھول گیا۔ جی، آپ کو کسی کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں، کس کی پھر کاپی کریں؟ وہی کی، وہی کی روشنی میں چلیں تاکہ اپنے وجود کی نفی نہ کریں۔ آپ کا اپنا مزہ اور اپنا رنگ ہے، ہم آپ کو اسی رنگ ڈھنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے لیے فطری ہے، اسی پر ہم آپ کو جانتے ہیں، بس آپ نقال نہ بنیں۔ اور یاد رکھیے کہ انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، مثال میں نباتات مختلف ہیں نا، کچھ پھل کھٹے ہیں، کچھ میٹھے ہیں، کچھ لمبے، کچھ پست قد ہیں، ایسے ہی انہیں رہنا بھی چاہیے۔ بس آپ دیکھیے نا، کیلا جو ہے وہ ناشپتی کیوں بنے؟ اس کا جمال اور قیمت تو کیلا بننے میں ہے نا۔ ہماری زبانوں، رنگوں، صلاحیتوں اور طاقتوں کا اختلاف تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، ہمیں اس کی نشانیوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ سورت روم کی بہت ساری آیتیں یاد آ رہی ہیں مجھے اس مضمون کے ساتھ، ومن آیاتہ، تو لکھیے آپ خود اللہ کی ایک نشانی ہے۔ تو ذرا سا گو تھرو کرتے ہیں اس ٹپ کو دوبارہ، نقال نہیں بننا، ڈونٹ کاپی ادرس۔ دیکھیے کاپیڈ چیزیں تو اچھی بھی نہیں ہوتی نا، اکثر چیزوں پہ لکھا ہوتا ہے کاپی نہ کریں، نقالوں سے ہوشیار، آج کے دور میں اس کو ایک لفظ دیتے ہیں ریپلیکا۔ کسی ڈیزائنر کا اصل ڈیزائن ہے وہ اصل یہ ریپلیکا بن جائیں یا خریدیں یا بیچیں، دل بھی نہیں مطمئن ہوتا۔ تو دوسروں کی نقل نہ کیجیے، اپنی شخصیت گم نہ کیجیے، آپ کو اللہ نے ایک خاص ٹیل دیا۔ اچھا، بعض لوگ بات کرنا شروع ہوتے ہیں نا، پھر کسی کی خاص ٹون اختیار کرتے ہیں، جیسے قاری ہیں تو وہ ایک دوسرے کی آواز کو لے کر چلتے ہیں۔ آپ جس کو زیادہ سنیں گے آپ خود بخود اس جیسے ہو جائیں گے، یہ تو فطری بات ہے۔ بچہ بھی ماں کو زیادہ دیکھتا ہے تو ماں جیسا ہو جاتا ہے، باپ کی حرکتیں کرے گا، بچوں میں ماں باپ کا روپ ہوتا ہے نا، تو آپ جس ماحول میں زیادہ رہیں گے آپ ویسے ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کو سجتا ہے، مثلا میں آپ کو ایک مثال دینے لگی ہوں، کچھ اسپیکر پنجابی زبان میں لیکچر دیتے ہیں یا اردو میں بھی دیں نا، تو ان کا بیک گراؤنڈ پنجابی اسٹائل کا ہوتا ہے، یا دیہاتوں میں جو مدرسے ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ماشاءاللہ قرآن سنت کے اوپر رہنے والے، ادھر سے پڑھ کے آتے ہیں۔ اب وہ جب درس دیتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں یا جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، ان کا ایک اپنا اسٹائل ہے، نحمدہ ونستعین، ایک لے، ایک ٹون۔ اب میں اپنے اوپر ہی لیتی ہوں کیونکہ میں اور کسی کے اوپر تو یہ جرات نہیں کرتی، میں کیسی لگوں گی اگر میں اس طرح کے انداز میں آپ کو ابھی پڑھاتی؟ بول کے بھی نہیں دکھانا چاہ رہی، مجھے اپنی عزت بڑی پیاری ہے، میرا کام ہے سیدھا سیدھا آپ کو ٹینشن فری لائف کے طریقے بتا دوں، میں آپ کو لا تحزن کا طریقہ سکھا دوں، بس میں زیدی بات کروں، میری زبان میں لکنت ہے، میری اردو زیادہ اچھی ہے نہیں ہے، مجھے اس میں کوشش کر لینی چاہیے، دی بیسٹ جو میں آپ کو دے دوں، لیکن مجھے کبھی کسی کو کاپی نہیں کرنا، ورنہ بندہ سجتا ہی بھی نہیں ہے، برا لگتا ہے۔ پھر اس طرح آپ دیکھیں کہ اختلاف تو خوبصورتی ہے، اللہ نے بہت ساری طبیعتیں بنائی، اس میں حسن ہے۔ اگر سارے پھل آم بن جائیں تو کیا مزہ، فروٹ چاٹ کیسے بنائیں گے آپ؟ سارے پھل انار بن جائیں تو پھر اسمودی کیسے بنے گی؟ تو فطرت کا حسن ہے، مختلف طبع کے لوگ ہیں، تو کیا سیکھا؟ اپنی شناخت برقرار رکھیے۔ जब शक्ल सूरत में सब लोग बराबर नहीं, या इवन दो लोग पूरे के पूरे बराबर नहीं, तो फिर बाकी बातों में कैसे है? ये अल्लाह के वजूद की निशानी है, मैं तो अक्सर देखती हूँ। और चूंकि बाहर की दुनिया में आप होते हैं, तो एक गोरा है, तो एक काला है, तो एक सोमाली है, तो एक अफ्रीकी और एक पाकिस्तानी और एक इंडियन, हर एक की शक्ल का रंग भी फ़र्क है, यानी स्किन कलर भी डिफरेंट है। उसको देखकर ही सिर्फ आप पहचानते। फिर फीचर्स देखिए, ये जापानीज़ फीचर्स हैं, ये चाइनीज़ फीचर्स हैं। मैं तो यूरोप में जितने सालों से घूम फिर रही हूँ, तो मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही इस पे बहुत इंजॉय करते हैं। सिर्फ आप एयरपोर्ट से एक से चढ़ के दूसरे में उतरते हैं, यूरोप के विद इन की बात है, आप नॉर्वे से जर्मनी आ जाते हैं, जर्मन 2-4 दिन गुजार कर आप पेरिस आते हैं, पेरिस से आप निकलते हैं, आप आयरलैंड चले जाते हैं, और इसी तरह सो ऑन। शक्लें तक फ़र्क होती हैं, बात का अंदाज तो दूर की बात है। तो मैं उनको कहती हूँ कि देखिए अल्लाह ने कितनी वैरायटी बनाई ना, सिर्फ सुबह से रात तक आसमान के मुख्तलिफ रंग देख लीजिए, और उस पे जो बादलों के तोहफे हैं ना, आपको ये बात समझ आएगी कि वैरायटी में हुसन है। तो आप अपनी आइडेंटिटी लूज मत कीजिए। अब मुझे एक जरूरत तो दीजिए बात करने की, क्या आज हम मुसलमान गैर मुस्लिमों की नकाली तो नहीं करते? क्या आज मैं और आप गैरों की नकल तो नहीं मारते? जो अल्लाह के नबी ने कहा, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम, हम उनके कपड़े पहने, उनकी बातें करें, और बाद में फिर उन्हीं पे तनकीद करें, तो ना समझी की बातें। हम तो उन लोगों के साथ जंगो जिदाल करना चाहते हैं जिनकी शादियों के तौर तरीके और रस्म व रिवाज के बगैर हमारी खुशियाँ ही नहीं पूरी होती। तो सवाल पैदा होता है, लिखिएगा कि नक्काली बंदा क्यों करता है, क्या वजूहात हैं? पहली बात है कि आप दूसरों से इम्प्रेस्ड होते हैं। फिर एक वजह होती है दूसरों की मोहब्बत की बजाय आप उनसे जलन और हसद का शिकार होते हैं। फिर इसी तरह एक और बात देखिए, सासे कमतरी है। देखिए ना, जब मुझे जो अपना रंग रंग प्यारा है, तो मैं आपका क्यों अपनाऊं? बस लोगों के दिलों में ये एहसासे कमतरी होती है, हम मॉडर्न लगेंगे, हम ये लगेंगे, हम वो लगेंगे। और इसी तरह से बाज़ दफ़ा फिर मुखालिफिन की मोहब्बत भी बड़ी होती है। आज अफसोस की बात है, हमें मुसलमानों के साथ नहीं, गैरों के साथ ज़्यादा नस्बत है। सोचिए ज़रा। फिर इसी तरफ देखिए कि जदीद तालीमी अंदाज भी हमारा ऐसा हो गया, तालीमी इदारों में यही कुछ है, हम दूसरों के जैसे बनते बनते अपने भी ना रहे। आज अब देखिए कि बेसरोपा नक्काली का एक जुनून फैल चुका है, हम इतने वेस्टर्नाइज दिखना चाहते हैं कि फिर हमें उसके बाद कोई इस्लामी गेटअप अच्छा ही नहीं लगता। हमें तो सुन्नतें बोझ लगती हैं, यानी किसी का जुमला बोल देती हूँ कि सुन्नत वो काम ना करा सकी जो फैशन ने करा लिया, यानी मर्द टखने ना खोल सके हालांकि सुन्नत है, और ख्वातीन और बच्चियों के खुल गए। तो ये फैशन की ताकत है ना, इसमें भी आप नकाली देखिए, कितना सोच के कोई यही फैशन इख्तियार करते हैं। कोई एक आप ही जैसा बड़ी हिम्मत वाला किरदार, जिसको आप मॉडल कह लीजिए, कोई बहुत ही कॉन्फिडेंट ख्वातीन में से खातून आती हैं, वो लंबी कमीज़ों के फैशन में छोटी कमीज़ पहन के दिखा देती हैं, उनको नहीं शर्म आती। हाँ, बहुत सारे उनको देखते हैं, अच्छा ये फैशन होगा, ये भी करते हैं। तो क्या आप सुन्नत को फैशन नहीं बना सकते, हया को फैशन नहीं बना सकते? और जितना ज़्यादा इससे आप अपने आप को रोकेंगे ना, उतना आपकी नस्लें महफूज होंगी। तो गैर मुस्लिमों की नक्काली से बचें। आप अगर शीशे में कुछ अक्स देखना चाहें, तो आप देखिए कि वो अमूमन उल्टा दिखता है ना, राइट लेफ्ट होता है, लेफ्ट राइट होता है। मुसलमान भी जब गैर मुस्लिम की नक्काली करता है ना, तो वो सारा कुछ उलट पुलट हो जाता है। तो मिरर में सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, आप उसको उलट करके देख लीजिए, तो वो भी नहीं रहता जो कि असल में था। आप वैसे बन जाएं जैसा आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, तो आपके बच्चे आपको कॉपी कर लेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। बच्चा सबसे बड़ा नक्काल होता है, इन्हें जो भी हुक्म देना, पहले खुद इसकी अमली तस्वीर बने, तो इंशाल्लाह आप अपने बच्चों की तरबियत करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि बच्चे सुनते नहीं हैं, तो आगे से जवाब क्या था, कोई बात नहीं सुनते नहीं है, लेकिन याद रखो, भूलना नहीं कि बच्चे देखते ज़रूर हैं। ये हमने पेरेंटिंग ए टू जी के सेमिनार में बहुत डिस्कस की थी टिप, कि बच्चे आपको देख रहे हैं, चाहे बेशक वो आपकी ना सुने। तो एक जुमला खुद को कहिए, या आपका होमवर्क है, आई एम स्पेशल। यदि मैं आपको कहती हूँ यू आर स्पेशल, खुद को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, आप दूसरों से अलग एक मुकम्मल शख्सियत हैं। आपको क्यों गम है, आप क्यों डिप्रेस रहती हैं? आपकी दुखी रहती हैं, फुलां की नाक ऐसी, फुलां के होठ ऐसे, क्या पता कई लोग आपको देखकर रश करते हों कि आप कितनी प्यारी लगती हैं पहनी ओढ़ी। अब हमें चूंकि अपने नहीं दिख रहे होते ना फीचर्स, हम अपने आप को नहीं दूसरों को देख रहे होते हैं ना, तो दूसरे हमें देख के हो सकता है हमसे जेलस हो रहे हों और हम दूसरों को देख कर कुटते रहें। तो आज के बाद आपने दूसरों को कॉपी नहीं करना, चाहे वो मेकअप के रंग ढंग में या स्टाइल में या किसी में। खुद को कहें मेरे जैसा कोई नहीं, मैं अल्लाह का मास्टर पीस हूँ। देखिए तकब्बुर नहीं करना, फ़ख्र और गरूर नहीं, जोड़ें अल्लाह से, लेकिन अपने ऊपर रश कीजिए। आपको जो पहनना सजता है वो पहने। अब देखिए ना, हैयत और किरदार के मुताबिक चलने और पहनने की बात है। अब एक दुबली पतली छोटे छरीरे से बदन की लड़की है, उसको हो सकता है हर चीज़ सज जाए, तो क्या आपको भी सजेगी? आपकी टांगों का साइज पता लग जाएगा लोगों को आपके टाइट्स में से, आपके हिप्स खुल जाएंगे आपके लंबे चॉक्स में से। तो हमेशा वो बनिए जो आपको जचे। दुनिया ऊपर चली जाए, दुनिया नीचे ले आए, टखने ऊंचे टखने खोल दे, वो लंबी कमीज वो छोटी, वो जो मर्जी करे, पर आप वो पहनिए कि जिसके बाद लोग बाद में जाके हंसे ना कि इनको क्या हो गया। और जिस तरह हर फल का मज़ा है, आपका अपना मज़ा है, उसको बढ़ाइए। आपकी आवाज़, आपका लहजा, आपकी चाल ढाल दूसरों से अच्छी है, आप उसको ज़रा और इम्प्रूव कर लीजिए। तेज़ बोलते हैं, आहिस्ता बोलिए, सीखिए, पर्सनल ग्रूमिंग कीजिए। किसी एक को आप फॉलो भी कर सकते हैं इस रंग में कि मैंने अपने आप को इनसे टैली करना है, ये कैसे बोलता है मैंने कैसे बोलना है, ये कैसे चलता है मैंने कैसे चलना है, और इंशाल्लाह ताला एक खास हद तक फिर आप कामयाब हो जाएंगे। अबू दाऊद की रिवायत लीजिए इस टिप के ऊपर, हदीस नंबर 4031, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हुम। जो शख्स जिस कौम की शुबाहत यानी मुशाबहत इख्तियार करेगा वो इन्हीं में से है, तो फिर किसी कौम से मरूब होकर उसकी बेजा तकलीद करके अपनी तहजीब को अपने हाथों खत्म ना कीजिए। आज मुस्लिम कल्चर ख़त्म हो रहा है और हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या चीज़ मुस्लिम कल्चर है और क्या फ़राइज़ और सुन्नतें हैं इन चीज़ों में। फिर इसे आप देखिए, न्यू ईयर, नाइट मनाना, क्रिसमस, दिवाली, होली, वैलेंटाइन डे, अप्रैल फूल मनाना, ये किन की नक्काली है? हमारे तो बड़ों ने ये नाम भी नहीं सुने थे। तो इस नक्काली से भी खुद को बचाना है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मर्द की मौजूदगी में एक औरत की नक़ल उतारने लगी। आपने फरमाया कि मैं पसंद नहीं करता कि किसी की नक्काली करूं, अगरचे इसके इवज मुझे बहुत कुछ दिया जाए। ये सिलसिला सहीहा की रिवायत है 2835। तो कहीं हम में, ख़वातीन में ये रिवाज ज़्यादा ही तो नहीं, नकलें करना, नकल उतारना, मुंह बना बना के दिखाते हैं, एक्शन बनाकर, कमर पे हाथ रख के, चल चल के दिखाते, और ख़ास तौर पे ससुराली रिश्तों और उसमें भी नंद की तो एक एक पोजीशन हम दिखाते हैं, ये ऐसी करती वैसी करती। सवाल कीजिए खुद से, बेतकल्लुफ दोस्तों की महफिल में क्या रवैया होता मेरा? तो इंशाल्लाह आपको ये पता लग जाएगा। तो अमल के नुकात, दूसरों से इल्म सीखिए, हुनर सीखिए, मगर अपनी शख्सियत पर किसी दूसरे की छाप नहीं लगानी। और बनावटी लबो लहजा और चाल ढाल फितरत के मुनाफी है, अपनी ज़ात पर एतमाद से जीना। और अगर आपको ये मशवरे अच्छे लगे हैं तो मैं कह सकती हूँ कि 5% तो गम दूर हो जाएंगे, टेंशन में से काफ़ी कुछ तो निकला है। देखिए 10 टिप्स पूरी हुई हैं यहाँ। चंद चीज़ों का सवालनामा लिखिए अपने लिए और ख़ुद से पूछिएगा बाद में, क्या मेरा डिप्रेशन 10% दूर हुआ? अगर हो गया ना तो मुबारक हो, ऐसे ही है कि जैसे डॉक्टर ने आपकी सही बीमारी की तशखीस कर ली, ठीक है। और अगर आपका नहीं भी हुआ ना, तो इसका अंदर कि अभी वो जो पीछे बहुत सारी टिप्स आने वाली हैं ना, उसमें आपका इलाज होगा, सुनते रहिए। आपके अंदर ये 10 की 10 नहीं होंगी इंशाल्लाह, क्योंकि वजूहात इससे ज़्यादा हैं जो कि हम जानते हैं।